ब्रह्मा कुमारी सिक्योरिटी सर्विसेज विंग प्रस्तुत करता है इन स्ट्रेंथ की टू ओवरकम चैलेंज।
नमस्कार, शुभ संध्या। ब्रह्मा कुमारी के सिक्योरिटी सर्विस विंग के द्वारा आयोजित दो दिवसीय ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस इनर स्ट्रेंथ की टू ओवरकम चैलेंजेस, इसमें आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। प्रथम सत्र में हमने स्वयं की शक्तियों को पहचाना, जाना, अपने अंदर गए कि हमारी कितनी क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, और यदि हम खुद की शक्तियों को जागृत कर लें तो क्या से क्या कर सकते हैं, इसकी सुंदर जानकारी हम सबको प्राप्त हुए। लेकिन स्वयं को जानने के साथ यदि हम सुप्रीम सोर्स को भी जान जाएं, उससे यदि हमारे मन के तार जुड़ जाएं, यदि पावर हाउस से कनेक्शन हो जाए, तो सोचो कि हमारी शक्तियां और कितने विकसित हो सकती हैं। उस सुप्रीम सोर्स से जुड़ करके ना केवल हमें शक्ति मिलेगी लेकिन सद्मार्ग भी मिलेगा, क्योंकि यह भी तो आवश्यक है कि केवल शक्तियों को जान लेना, पहचान लेना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसे सही दिशा देना भी बहुत बहुत जरूरी है। इसीलिए संध्याकालीन सत्र का विषय रखा गया है सुप्रीम सोर्स एंड हार्नेसिंग ट्रू पोटेंशियल, कि हम कैसे अपने अंदर की क्षमता को और भी ज्यादा जानें और उस सुप्रीम सोर्स से जुड़कर इसे और ज्यादा विकसित करें। तो आइए इस सत्र की शुरुआत करते हैं। शुरुआत हमेशा ही मीठे से होती है, तो हमें अपने मीठे बोल के द्वारा, अपनी दुआओं और शुभकामनाओं के साथ हमारे बीच आ रहे हैं पूर्व वॉइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल श्री मिलन नायडू जी, जिन्होंने 41 वर्षों तक सेना में अपनी अभूतपूर्व सेवाएं प्रदान की हैं और कई बार माउंट आबू आकर राज्यों का भी सुंदर और गहन अभ्यास किया है। साथ ही अपनी शुभकामनाओं के साथ हमारे साथ होंगे श्री रॉबिन हिब्बू जी, जो कि अरुणाचल प्रदेश के प्रथम आईपीएस ऑफिसर रहे हैं और वर्तमान समय आप स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं दिल्ली में। साथ ही एक प्यारा सा गीत प्रस्तुत करेंगे आईटीबीपी के जवान लवली सिंह जी। आइए स्वागत करते हैं।
ओम शांति। मेरा नाम मिलन नायडू है। मैं 2008 में आर्मी हेडक्वार्टर से रिटायर हुआ, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, और मुझे बहुत ही खुशी है कि मुझे सिक्योरिटी विंग ने ब्रह्म कुमारी के आज आमंत्रित किया है आप लोगों से, आप लोगों को संबोधित करने के लिए। अब देखिए, जब मैं फौजी बोलूंगा माने तीनों सेनाओं के फौजी, चाहे थल सेना हो, वायुसेना या आर्मी, ये तीनों के सैनिकों के लिए और अफसर साहबान के लिए ये मैं बात बताऊंगा। हम सबको मालूम है कि जब हम ड्यूटी पे होते हैं और खासकर लड़ाई की हालत में या बॉर्डर के ऊपर या समुद्र के ऊपर जहां पे भी ड्यूटी पे होते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल वाला काम होता है। क्यों? हम अक्सर अकेले होते हैं। हाँ, अपने साथी होते हैं लेकिन अक्सर अकेले होते हैं, इस तरीके से कि हम अपने घरेलू मामले के बारे में किसी से खास बात नहीं कर सकते। घर की प्रॉब्लम होती है, अगर ऐसी जगह है जहाँ चिट्ठी उठी का बंदोबस्त नहीं है तो चिट्ठी हमको कई दिनों के बाद मिलती है, और जहाँ है और मोबाइल फोन का जुगाड़ है तो मोबाइल फोन से हर दो दो मिनट में खबर मिलती है। ये दोनों ही हमारे दिमाग के ऊपर बहुत असर डालती है। घर पे क्या हुआ, आज कोई बीमार हो गया, बच्चा लड़ पड़ा, गिर पड़ा, चोट लगी, ये सब बातें हमको खबर लगती है, और जिसके लिए हमारे पास कोई लाचार रहते हैं, हम अब कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ वो खबर सुनने के बाद हमको चुप लगा के रहना पड़ता है क्योंकि हम किसी कुछ बोलने के लायक नहीं होते। तो ये सब जो है वो बड़ा टेंशन दिमाग के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से हमें जो है कोई तरीके से इस टेंशन को दूर करना है ताकि हमारा काम अच्छे से चले और हम भी खुशहाल रहें। मुझे एक कहानी याद आती है, एक राजा थे, वो जंगल में शिकार खेलने गए। रास्ते में गांव में उनको खबर लगी कि पास में कोई दाएं बाबा जी आए हैं, साधु महात्मा हैं, और उनके भविष्यवाणी वगैरह या जो भी बताते हैं बहुत सही बताते हैं। तो उनके पास गए देखने के लिए। उन्होंने देखा वो बैठे हुए थे नदी किनारे एक पेड़ के नीचे। उन्होंने कहा, जनाब बाबा आप हमारे साथ चलिए, आपको हम अपने राजभवन में बैठाएंगे, वहाँ आराम से बैठिए, खाना पीना खाइए और वहाँ पर कुछ दिन हमारे साथ गुजारिए। बाबा ने कहा हाँ चलेंगे, लेकिन ये उसमें चार शर्तें हैं, अगर मंजूर है तो मैं चलूंगा। उन्होंने कहा क्या है चार शर्तें? तो उन्होंने कहा कि मैं वहां पे सोऊंगा, खूब सोऊंगा, लेकिन आप जगते रहोगे। नंबर दो क्या है? नंबर दो मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा और आप मेरे जैसे अभी जैसे मैंने कपड़े पहने वैसे पहनूंगा। तीसरी शर्त क्या है? तो उन्होंने कहा साहब मैं खाना खाऊंगा अच्छे से, लेकिन आप कुछ नहीं खाओगे। और आखिरी बात, चौथी बात यह है, उन्होंने कहा कि आप 24 घंटे मेरी सेवा करोगे, लेकिन आप कहीं नहीं जाओगे, वहीं रहोगे। तो उन्होंने राजा ने बताया कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे को राज चलाना है, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं फलाने जगह का राजा हूं और कैसे मेरे काम किए बगैर कैसे काम बनेगा। उसने कहा तो फिर ये अगर शर्त मंजूर नहीं है तो फिर मैं नहीं चल सकता। अब जो मेरे राजा हैं वो पूरे सृष्टि के राजा हैं और ये चारों शर्त मेरे से मानते हैं और उस चारों शर्त पूरा करते हैं। वो कभी जब भी मैं सोता हूँ वो मेरी देखभाल करते हैं, जब मैं भूख लगती है मुझे खाना बंदोबस्त करते हैं, खुद नहीं खाते हैं। जब मैं जो भी कपड़े पहनता हूँ वो कपड़े नहीं पहनते, और आखिरी में वो 24 घंटे मेरे साथ हैं। तो ये बताइए मैं आपके साथ क्यों चलूं? तो इसमें राजा को अपनी औकात का एहसास हुआ और उसने ये क्षमा मांगी और वो आगे चले गए। कहने का मतलब ये है कि हमको भी ये एहसास करना है कि हम हमारा किसके साथ रिश्ता होना चाहिए। तो हमारा रिश्ता होना चाहिए वो परम परमेश्वर, परमेश्वर के साथ। और वो कैसे हो सकता है? जब हम अपने दिल से, अपने दिमाग से उसके ध्यान करें और उससे बातचीत करें और उसको अपने पास बुलाएं और उनके साथ हमारा कोई डायरेक्ट कनेक्शन हो, जैसे टेलीफोन का कनेक्शन होता है। वो कैसे मिलेगा? वो योग करने से मिलेगा। और योग कैसे करेंगे? हर एक तरीके का योग होता है, वो काफी सारे होते हैं। और हमारे ये, मेरा ये मानना है कि राजयोग से हमारा कनेक्शन ऊपर वाले के परमात्मा के साथ डायरेक्ट मिल जाता है। और उसको करने के लिए हमें थोड़ी सी सीखना है कि हम राजयोग कैसा कर सकते हैं, अपने रोज के दिनचर्या में कैसे राजयोग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम अपने आप, हमारे दिमाग का संतुलन बना सकते हैं। और जब संतुलन बनाएंगे तो ये होगा, हमारा काम अच्छा चलेगा, हम खुश रहेंगे, हमारे बीवी बच्चे फैमिली खुश रहेगी और वातावरण जो है वो अच्छा हो जाएगा। यही मुझे कहना था कि आप लोग सब भी राजयोग की चेष्टा करें और उसी मुताबिक राजयोग को अपना के ऊपर वाले के साथ, परमात्मा के साथ अपना रिश्ता जोड़ें। जय हिंद, ओम शांति।
ये जो इनर स्ट्रेंथ है इस महामारी कोविड के दौरान में, ये भी कहा होगा कि हम वर्दी वाले हैं, समाज के रख वाले हैं, बहुत ही हमें भी परेशानियां झेलना होता है, हमें और भी मुश्किलें सामने करना होता है। लेकिन मैं समझता हूं आप एक वर्दीधारी होने के नाते आपको एक भगवान ने देश में एक अच्छा मौका सेवा दिया है इस वर्दी को पहन के, इस वर्दी में आम जनता आपको उम्मीद से देखती है, आम जनता आपको सेवा की भावना से देखती है। मैं समझता हूँ कि ये इनर स्ट्रेंथ जो आत्मा जो शांति इस समय में बहुत जरूरी है, और इसमें जो ब्रह्म कुमार ने तो आप बहुत लोग हमने भी अटेंड किया है, बहुत बार सिखाया कि योगा मेडिटेशन जिसके द्वारा जो भी आप स्ट्रेस में रहते हैं तो उसे बहुत ही लाभदायक मैंने भी महसूस किया है। तो जब आप लोगों के लिए सेवा करेंगे ये हमेशा सोचना कि आप एक दूर बन करके आप जनता के सामने खड़े वर्दी पहन कर, तो आप इस तरह की अगर जो सेवा करेंगे तो आप रात को अच्छे से नींद आएंगे, आपका मन को शांति मिलेगी और आप और सेवा करने का आपको प्रेरणा मिलेगी। तो आप इस जो तनाव में भी अगर आप अपना मन को ये बात जिसको भी आप मानते हो, चाहे ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी धर्म का हो, सेवा, और ये सेवा अगर आपके दिल में है, और मैं भी ये मेरा ये मानना है, जब से मैं आईपीएस में वर्दी किया तब से मैं मेरे लिए ये एक वर्दी नहीं, मेरे लिए एक सेवा का और एक मेरे लिए दो हाथ हो गया, मेरे भगवान ने कुदरत ने दो हाथ दिया हुआ है, लेकिन ये वर्दी ने और मुझे भगवान ने मुझे और हाथ दे करके लोगों को सेवा करने की। तो इसीलिए जो भी जो पुलिस वाले हैं, यूनिफॉर्म है या आर्मी है, नेवी हो, कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड जो हो, इस समय में आपको संयम रखना बहुत ही जरूरी है। कभी कभी आपको परिवार से दूर रहना होता है, अपनों से दूर रहना होता है, लेकिन आप कभी ये सोचो कि आपका बलिदान से आपका ये जितना भी मेहनत कर रहे हैं, जितना भी आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जितना भी आप अपना जो जो आम जिंदगी की तरह बाकी की तरह आप घर में नहीं रहते हैं, लेकिन आपको ये भी तो नसीब है कि आप वर्दी धारण करके लोग आपको एक दूर की तरह एक एंजल की तरह आपको देख रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप खुद ही अगर आप मन में शांति नहीं रहेंगे तो आप सही सेवा आप नहीं दे पाएंगे, आप सही तरीके से सेवा नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि सेवा से पहले आप अपना मन को शांति रखो, और शांति रखने के लिए जैसा मैंने बताया है आपको जो 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 मेडिटेशन है, योगा है, एक्सरसाइज करना है, जो अपना मन को शांति रखना है, और जो आपको हेल्दी रखने के लिए इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अगर ये अगर आप हमेशा आपका दिमाग में रहे सुबह शाम, तो आपको ये मन की शांति बाहर में ढूंढने की जरूरत नहीं, बस अपना दिल के अंदर में है। मुझे बड़ा उम्मीद है जहां भी कहीं भी आप वर्दी वाले इस वीडियो को देख करके, और जो 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 ब्रह्म कुमारी ने जो जिन्होंने जो मुहिम चेहरा है इनर स्ट्रेंथ बहुत ही जरूरी है। मैंने भी अपनी जिंदगी आईपीएस की जिंदगी में देखा है, जिस आदमी के साथ मन में शांति ना हो, वो घर में भी, अपना ऑफिस में भी, जहां भी वो काम करेंगे, वो कहीं भी किसी को प्यार नहीं दे पाएगा, किसी को सेवा देने नहीं कर पाएगा। तो ये जो इनर स्ट्रेंथ है, मन की शांति है, अपना मन को काबू रखना बहुत ही जरूरी है। मैं समझता हूँ कि ये जो ब्रह्मा कुमारी के जितना भी जो मेडिटेशन है, योगा है, हर किसी को लेना चाहिए, ताकि इससे मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं अपना मैंने इसका बहुत तरीके से योगा किया, मुझे सुबह में मैं अपना आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सुबह हर सुबह उठ करके मैं अपना योगा और मेडिटेशन करता हूँ, जिसके कारण भगवान के आशीर्वाद से मुझे आज तक बुखार क्या होता है, सिर क्या होता है, मुझे नहीं मालूम। ये भी आप कह सकता हूँ, जितना मुश्किलें आए, मेरे पिताजी मर गया, बहन मर गया, क्या नहीं हुआ जिंदगी, लेकिन ये मन की शांति, इनर स्ट्रेंथ, इनर मन की शांति दुनिया को जहां भी हो अपना मन को काबू में रखते हुए समाज की सेवा में लगे हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।
सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो जो खुद सो गए वो थे लाडले अपनी माँ के पाले मगर हो गए गोलियों के हवाले वो थे लाडले अपनी माँ के पाले मगर हो गए गोलियों के हवाले आजादी के बदले जवानी लुटा दी वतन के लिए जाकी बाजी लगा दी आजादी के बदले जवानी लुटा दी वतन के लिए जाकी बाजी लगा दी हमारे थे अब देश के हो गए हमारे थे अब देश के हो गए वतन को जगा कर जो खुद सो गए वतन को जगा कर जो खुद सो गए सलाम उन शहीदों को जो खो गए सलाम उन शहीदों को जो खो गए वतन को जगा कर जो खुद सो गए वतन को जगा कर जो खुद सो गए।
मित्रों, बचपन से ही हम सब ने किसी ना किसी रूप से सुप्रीम सोर्स को याद किया है, उससे जुड़ने की कोशिश की है, अपने माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ। भले ही मन में गहरे प्रश्न ना उठे हों, लेकिन जब हम बड़े हुए, इस रूप में हमने पूजा अर्चना ना भी की हो, लेकिन मन में ये भाव तो जरूर आता है उस गीत के अनुसार कि ये कौन चित्रकार है जिसने इतनी सुंदर सृष्टि रची है, मनुष्यों को ऐसा बनाया है, शरीर को ऐसी संरचना प्रदान की है, और जिसकी रचना इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। जरूर कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमारे मन में उस सुप्रीम एनर्जी के लिए, सुप्रीम सोर्स के लिए मन में भाव जरूर आते हैं। लेकिन कभी कार्य की व्यस्तता के कारण तो कभी अन्य कारणों से हम इसकी गहराई में नहीं उतर पाते, लेकिन अंतर में तो ये जरूर है कि हम उसे जानें। तो आज उस सुप्रीम सोर्स की ओर हमें ले चलने के लिए, उनसे अवगत कराने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग से आदरणीय ब्रह्मा कुमारी संतोष दीदे जी, जो कि रशिया में ब्रह्मा कुमारी केंद्रों की जॉइंट रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं और पिछले 40 वर्षों से राज्यों का गहन अभ्यास कर रहे हैं। तो आइए उनके साथ सुप्रीम सोर्स की ओर चलें।
सर्वप्रथम देश के कोने कोने में अनेक प्रकार के सुरक्षा बलों में अपनी अपनी जिम्मेवारियां निभाते हुए आगे बढ़ने वाले सभी भाइयों को और बहनों को इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ईश्वरीय स्नेह संपन्न अभिवादन है, और वो भी इस समय जब ग्लोबल लेवल तक दहशत फैलाती बीमारी से पैदा हुई परिस्थितियों ने आपके कार्य को कई गुणा बढ़ाने के साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड भी कर दिया है। तो आज की बातचीत उन बलवालों ताकत वालों से है जिनकी जीत और हार, गिरना या उठना सब का आधार बल है। तो जरूर ही ऐसे बलवालों को बलवान बनाए रखने के लिए सरकारी तौर से, आधिकारिक तौर से भी मेहनत की और कराई जाती है। अस्त्र शस्त्र और नित नई तकनीकी साधनों से सुरक्षा कर्मियों को लैस किया जाता है, और इसका ही परिणाम है कि हम आप सब आज अपना अपना कार्य कर सकते हैं, जीवन जी रहे हैं, स्थान स्थान से संबंध जोड़कर कारोबार चला रहे हैं, और उसके लिए सभी फोर्सेस का दिल से धन्यवाद। परंतु इसके साथ साथ ये बात भी सही है कि एक ऐसा बल है जो भौतिक ज्ञान, भौतिक ट्रेनिंग या भौतिक साधनों से नहीं प्राप्त हो सकता, और वह है आंतरिक बल, इनर पावर, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ या आत्मिक शक्ति। यही इस सम्मेलन का विषय भी है। तो अपने कार्य को संपूर्ण निष्ठा से करने के लिए शारीरिक तैयारी के साथ साथ आपके इस फील्ड में एकाग्रता, साहस, दृढ़ता, धैर्यता, उमंग, उत्साह, लगन, इन सब गुणों की हर पल जरूरत रहती है। निर्णय शक्ति, सहन शक्ति, परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, इन सब का ब्लेंड ही इनर स्टैमिना, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट कहलाता है। और इसे धारण करने वाला ही स्वयं की वाणी की संभाल व सुरक्षा भी कर सकता है। अब इस आत्मिक इनर एंडलेस पोटेंशियल को, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को अचीव करने और उसकी डिग्री को मेंटेन रखने का कोई सिलेबस, कोई साधन, कोई प्रावधान सरकारी ट्रेनिंग में तो नहीं है ना, लेकिन होना तो अति आवश्यक है, चाहिए, क्योंकि वैसे भी इस कालीकाल में किसी भी व्यक्ति को दुखी, कमजोर करने के दसियों कारण एक सेकंड में बन जाते हैं। और इन सब फोर्सेस में कार्यरत तो सदा ही हाई वोल्टेज की नफरत, आक्रोश, दुर्व्यवहार, कटुता, हिंसा की प्रवृत्तियों के बीच ही अपना संघर्षपूर्ण कार्य करते हैं, जीवन जीते हैं। तो ऐसे रक्षकों की, हीरोज की इनर स्ट्रेंथ कम ना हो और मुश्किलों की आंधी तूफान आत्मबल को उड़ाकर ना ले जाए, और जो शक्तियों का मानक है, मीटर है हीरोज का, वो जीरो ना हो जाए, तो ये डर तो लगा रहता है। तो ये सब इनर रिसोर्सेस को अपडेट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, जब जब भी ये सब कम हो जाते हैं, उत्साह कम हो जाता है, शक्ति कम हो जाती है, तो हमेशा कहां की तरफ नजर जाती रही है, कहां से आशा की किरण का इंतजार रहा है। सर्वशक्तिमान, महाबली, महाकाल तो सदियों से जब भी ऊपर देखा तो इन सब उपाधियों से सर्वोच्च सुप्रीम पावर हाउस की तरफ ही तो देखते आए। तो जैसे कि अंदर में कोई मेमोरी है, चाहे किसी ने कहा नहीं, लेकिन जब यहां रास्ते बंद हुए तो अपने आप नजर उधर गई। तो सिद्ध है कि ऐसे रक्षकों का भी रक्षक ऊपर वाला है। तो परमात्मा ही सब फोर्सेस के कमांडर्स के भी कमांडर्स, चीफ के भी चीफ, मुखिया, ऑलमाइटी अथॉरिटी, उनको ही मानना चाहिए मुखिया। अब जब उसकी इतनी महिमा है, सर्वशक्तिमान सोच करके उसको याद करते, महाबली सोच के उसको याद करते, तो जरूर जब हम किसी को इतनी ऊंची नजर से देखते हैं तो जरूर उसने ऐसे ऊंचे कर्तव्य किए होंगे। और अब जब फिर से विश्व की, देश की परिस्थितियां बदलने के लिए इतने प्रश्न सामने खड़े हुए हैं, तो सर्व की रक्षा करने की क्षमता और समझ उससे ज्यादा किसके पास है? ऐसा सर्वोच्च बलशाली कहां है और उससे कैसे संपर्क करें, कैसे बात करें, कब करें? क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि इन आत्म शक्तियों की, गुणों की आवश्यकता है, लेकिन बिना उसके पूरा परिचय और एड्रेस जाने उससे लेने की बात आगे कैसे बढ़ेगी। जैसे कोई बाजार जाता है, सुपरमार्केट जाता है, तो हर शॉप के बाद साइन बोर्ड लगा होता है कि ये ग्रॉसरी स्टोर है, टेक्सटाइल स्टोर है। वो व्यक्ति अपनी नीड के प्रमाण जहां रुकना है वहां जाकर सौदा करता है, मूल्य चुकाता है, वस्तु ले लेता है। तो ऐसे ही जब सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर अर्थात परमात्मा से संपर्क की बात आती है, तो उसके लिए भी कम से कम इन बातों का हमें ज्ञान चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, सूचना चाहिए। पहली बात, वो कैसा दिखाई देता है, उसको रूप क्या है, और क्या वो इन आंखों से दिखाई भी देता है कि नहीं। हाँ, ये नहीं समझ लें कि अगर कोई चीज दिखाई नहीं देती तो इसका मतलब वो है ही नहीं। है, उसका अस्तित्व है, लेकिन उसका रूप क्या है जिससे कि उसकी सही पहचान हो, और दूसरा भाषा जिसमें उससे बातचीत हो सके, और तीसरा वो स्थान जहां पर संपर्क कर सके। परंतु इन सबसे भी पहले जरूरी है ये समझ, ये निश्चय, ये अनुभव कि मैं स्वयं एक आत्मा हूं, प्रकाश बिंदु हूं इस मनुष्य शरीर में। मैं मनुष्य हूं, मेरे अंदर आत्मा है, नहीं, मैं आत्मा हूं और मेरे इस मनुष्य शरीर में, अपने शरीर में मैं एक कैप्टन की तरह बैठी हूं, इस शिप को चला रही हूं, मालिक हूं इस शरीर की, कार है, इस कार की ड्राइवर हूं। जो भी लेबल हमने शरीर के कारण अपने पर लगा के रखे हैं, हम इंडियन हैं, अमेरिकन्स हैं, अफ्रीकन्स हैं, पर्शियंस हैं, या प्रोफेशन के लेबल्स लगा के रखे हैं, वास्तव में वो तो हमारे इस मटेरियल शरीर के द्वारा रोल है। हम ही इस शरीर के द्वारा कर्म कराने वाले, सोचने वाले, निर्णय लेने वाले अविनाशी, ट्विंकल ट्विंकल वेरी लिटिल, सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्माएं हैं। जैसे कि इस कार की हम बैटरी हैं, तो जैसे हम स्वयं चेतन सत्ता हैं, कॉन्शियंट एंटिटीज हैं, ज्योति बिंदु आत्माएं हैं, तो परम आत्मा सर्व आत्माओं में से ऊंची से ऊंची सर्वोच्च आत्मा भी दिव्य प्रकाश का बिंदु है। परंतु हां, साइज वही है, रूप वही है, परंतु सर्व आत्माओं की तुलना में ज्ञान गुण शक्तियों का कभी न खुटने वाला अविनाशी सिंधु है। अब कोई बच्चा छोटा होता है, जन्म लेता है, उसका बाप है, तो बाप का शरीर बड़ा है, बच्चे का छोटा है, लेकिन समय के साथ साथ बाप का तो वही साइज रह जाता, बच्चे का साइज उम्र के साथ बढ़ जाता, तो एक जैसा साइज होने के बाद भी बच्चा बच्चा रहता और बाप बाप रहता। तो ऐसे ही निराकार परमपिता परमात्मा ही निराकार आत्माओं के अविनाशी संबंधी हैं, लेकिन ज्ञान गुणों शक्तियों के कभी न खुटने वाले सिंधु हैं, सागर हैं। हम आत्माएं बार बार कर्म करते, उसके अकाउंट्स को सेटल करते, एक कार अर्थात शरीर छोड़ दूसरी कार में आते और अपनी एनर्जी जो है वो कर्मों के कारण कम होती जाती, पुनर्जन्म में आते जाते। परंतु परमात्मा अविनाशी सर्व आत्माओं का, सर्व धर्म आत्माओं का, देव आत्माओं का, सबका पिता, सदाशिव अर्थात सदा कल्याणकारी, इन गुणों में परिवर्तन नहीं होता। कि हाँ आज परमात्मा का मूड खराब हो गया लगता है, कि कल तो वो शांति का सागर था ना, सदा कल्याणकारी अवस्था में उस निराकारी दुनिया जो इस सृष्टि से पार सब चांद तारों से भी पार स्वयं प्रकाशित आत्माओं का घर ब्रह्मलोक में निवास करते हैं और जहां से ही हम सब ज्योति बिंदु आत्माएं इस सृष्टि पर आती हैं। अपने पिता जैसे ही हमारी पवित्रता सुख शांति आनंद के दिव्य संस्कारों सहित हम जन्म लेते हैं, प्रकृति के संपर्क में मालिक की तरह आते हुए साक्षी न्यारे डिटैच होकर के जीवन जीते हैं, संपूर्ण सुख की सृष्टि ये है परमात्मा की रचना। लेकिन प्रकृति के नियम के प्रमाण, क्योंकि प्रकृति के संपर्क में आ गई आत्मा, तो संकल्प बोल कर्मों की गति कर्म फल में बंधे होने के कारण, बार बार पुनर्जन्म लेने के कारण आत्मिक शक्ति पता नहीं पड़ता धीरे 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 डिस्चार्ज होती चली जाती है। और सबसे ज्यादा परिवर्तन जो हम बार बार देह में आने से और देह धारियों से ही सब संबंध संपर्क होने से खुद को भूल जाते हैं, अपने पवित्र ज्योति स्वरूप को भूलकर हम अपने को शरीर समझना और सबको उसी दृष्टि से देखना शुरू कर देते, स्त्री पुरुष छोटा बड़ा अमीर गरीब इन संबंधों से अपने पराये के भावों में किन्हीं आत्माओं के साथ अट्रैक्शन में किन्हीं आत्माओं के साथ रिपल्शन में ये गेम शुरू हो जाती है, तेरा मेरा शुरू हो जाता है, किसी के बहुत नजदीक किसी से बहुत दूर पोलराइजेशन शुरू हो जाता है, सीमाएं बांधनी पड़ती हैं, ये मेरा है इसको टच नहीं करना, यहां नहीं आना, ये आसमान का टुकड़ा हमारा है ये जमीन का टुकड़ा क्यों, क्योंकि जैसे ही स्वयं को ये खत्म होने वाला शरीर समझा विनाशी शरीर समझा तो थोड़े से समय के अंदर सब कुछ हम चाहते हैं तो ये स्वार्थ पैदा होने से तो जो आत्मिक प्रेम था वो फिर स्वार्थ में बदल जाता है या दैहिक आकर्षण और मोह में बदल जाता है तो सब श्रेष्ठ कर्मों की जो शक्ति है वो धीरे 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 खत्म होती है। हम एक घर से आए हुए एक परम पिता परमात्मा की संतान एक आदि सनातन दिव्य संस्कृति वाले परमात्मा के बच्चे हैं ना, तो जिसके बच्चे हैं वैसे ही तो हमारे संस्कार थे, वही तो हमारी संस्कृति थी, तो भगवान के बच्चे भगवान भगवती की तरह देवी देवताओं की तरह दैवी संस्कृति वाले संसार से दूर होते होते देह भान के कारण भेदभाव बंटवारा नफरत ईर्ष्या अनेक भाषाओं अनेक जातियों की कलह कलेश में पड़ते जाते हैं। तो आत्मा के खुद को भूलने से गुणों में शक्तियों में गिरावट तो रोग शोक हानि विक्षेप की दलदल में हम फंसते ही जाते। तो इसी एक भूल से स्वयं को भूलने से अपने घर को भूलने से पिता को भूलने से स्वधर्म और पवित्रता शांति जो हमारे व्यवहार में थी बोल में थी संबंध में थी उसको भी भूलते चले गए। तो यही एक भूल इसी अनुभव का खो जाना पूरी मानव जाति को एक परिवार वसुधैव कुटुंबकम से पीसेस में, टुकड़े टुकड़े में बिठा देता है। जो पीस इन द वर्ल्ड थी, विश्व में शांति थी, अब वो पीसेस में हो जाती है और इन टुकड़े टुकड़े में बैठ के जैसे पिंजरे के पंछी की तरह से आत्माएं श्रापित हो जाती हैं। और अपने अपने पिंजरों में बैठकर भी हम एक दूसरे से भयभीत, दुर्भावनाओं से ग्रस्त, अपनी सुरक्षा के प्रति सदा असुरक्षित महसूस करते हैं। और असुरक्षित हैं तो सुरक्षा बल बढ़ाते जाते हैं। और बाउंड्रीज को बड़ा करो, और दीवारें लगाओ, और किले बनाओ, तो श्रम भी बढ़ता जाता है ना, खर्चा भी बढ़ता जाता है ना। तो श्रम बढ़ा, खर्चा बढ़ा, संबंधों के लिए समय कम, जीवन के लिए समय कम, जीवन बचाने की मेहनत ज्यादा, जीवन जीने का समय कम। तो ये खोखलापन, आत्माएं सब दुखों के सागर में जो जब डूब जाती हैं, उनको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता, समस्याओं से छुड़ाने वाला कोई नहीं होता, तो ये समय, इसी को ही मानवता की रात, तमो प्रधान समय कहा जाता है। भले ही बाहर से तो हमें उन्नति का इल्यूजन दिखाई दे, ऐसा लगते कि हमने काफी साइंटिफिक इन्वेंशन से अपने जीवन को अच्छा बना लिया है, लेकिन वो एक एक हिस्सा है, वो छोटा सा हिस्सा है। अगर हम हर एक के मन की सारे दिन के अंदर, किसी एक व्यक्ति की भी सारे दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर उसके संकल्प की क्वालिटी को देखें, कितने हजार नेगेटिव वेस्ट और अननेसेसरी संकल्प जो उठते हैं, उसको क्या कहेंगे, उन्नति या अवनति। स्थूल को तो हमने सजा दिया, बाहर की दुनिया को भले स्वर्ग जैसा बना दिया, लेकिन उस दुनिया में रहने वालों की क्या हालत हो गई। तो जैसे अरबों सितारे आसमान में होते भी अंधेरा खत्म नहीं होता, परंतु सूर्य की एक ही किरण से उजाला हो जाता है, रात से प्रभात और प्रभात से दिन बन जाता है, ऐसे ही विश्व इतिहास में सतयुग त्रेता दिन खत्म होने के बाद द्वापर से गिरते गिरते कलयुग रात्रि तक पहुंचने पर अनेका अनेक मानव रचित, मानव कथित पुस्तकों, वेदों, शास्त्रों, सर्व सामूहिक ज्ञान के असीमित भंडार के बाद भी ये अज्ञान रात्रि खत्म नहीं होती है। तो यही समय है जब ज्ञान सूर्य, ज्योति बिंदु, ज्ञान बिंदु, कल्याणकारी शुभ परमात्मा, ज्ञान के सागर स्वयं साधारण माध्यम का आधार लेते हैं, जिसको कहा जाए कि निराकार, निराकार, जिसके पास अपनी कार नहीं, अपना शरीर नहीं, वो कुछ समय के लिए कार लोन लेकर के, उसको बताना है हमको हमारी गलती क्या है, तो उसको सिर्फ मुख चाहिए। तो वो इस मुख से तो पहले अपना परिचय देते हैं, जैसे कार को रेंट लेते हैं, इसको कहा जाता है पर काया प्रवेश करके कुछ समय के लिए ज्ञान देते हैं। तो सिर्फ एक परमात्मा ही मां के गर्भ से जन्म नहीं लेते, इसलिए उन्हें स्वयंभू भी कहते हैं। तो उनकी पोजीशन सिर्फ दाता की रहती है और देने में भी अखुट, अनलिमिटेड, अनकंडीशनल, सर्व गुण ज्ञान शक्तियों रूपी समान, और किसी के पास नहीं, वो तो दिखाई दे रहा है। सब जरूरतमंद हैं, ढूंढ रहे हैं, क्लाइंट्स हैं, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। आत्मिक शक्ति की बात हो रही है। स्थूल साधनों से भले ही संपन्न हो, लेकिन कोई भी एक नहीं है जिसके पास आत्मिक स्नेह, शांति, शक्ति का भंडार ऐसा हो जो सारा दिन कम से कम 24 घंटे स्थिति में एक दिन भी रह पाए, इतना खाली हो चुके हैं। और परमपिता परमात्मा तो भंडार है, तो उनसे लेने के लिए कोई लाइन में भी खड़े होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके साथ संपर्क तो मन की तार जोड़कर करना है ना। तो इस स्थूल दुनिया से पार परम धाम शांति धाम में रहने वाले, और हम यहां पर अभी इस शरीर में इस जीव द्वारा अपना रोल प्ले करने वाले, लेकिन उनके और बीच में, हमारे बीच में सिर्फ एक संकल्प की दूरी है। और उस प्रेम भरे एक संकल्प से हम अपने मन की तार उससे जोड़ सकते हैं। हम जहां से इस दुनिया में आए, जो हमारा अविनाशी घर है, स्थाई घर है, तो अपने संकल्पों को वहां स्थिर कर, हम कहीं भी परदेश चले जाएं, किसी दूसरे शहर में चले जाएं, कितने भी समय ना रहें, लेकिन अपने घर जाने का मन करे तो कितनी देर लगती है, आंख बंद की या आंख नहीं भी बंद की, सोचा, अपने घर के बारे में सोचा, अपने घर के सदस्यों के बारे में सोचा, और एकदम वो फ्रेश स्नेह की लहर तन मन में दौड़ जाती है। तो ऐसे ही संकल्प के लिए दूरी का महत्व नहीं है, तो उस घर में संकल्पों को स्थिर कर, यहां धरती पर होते हुए भी बस सुप्रीम लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लव, शांति सागर के सामने स्वयं को भी स्थिर ज्योति अनुभव करते हुए बैठ जाना है। वो मेरे अपने पिता हैं, तो पिता को खुश करने के लिए मुझे कोई सिर नीचे पैर ऊपर करने की, अन्न जल त्याग करने की, या किसी अन्य तरीके से शरीर को कष्ट देने की, कुछ जपने की, मंत्र माला खुश करने के लिए तो जरूरत नहीं है। हाँ, बिजी रखना है, कुछ भी करो, पर वो तो मेरे लिए, अपने सब बच्चों के लिए सदा ही अवेलेबल है। उनका तो पूरा ही अटेंशन हम आत्माओं पर है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें उनके बच्चों को फिर से संपूर्ण पवित्र बनकर खो दिया ना, पवित्रता को खो दिया ना, शक्ति को, तो फिर से हमें संपूर्ण पवित्र बनना है, तभी ही हम इस समाज को, देश को, दुनिया को स्वर्ग, सबके लिए स्वर्ग बना सकते, कोई एक दो के लिए नहीं। मल्टी मिलियनर्स कुछ जिनकी लिस्ट 20 लोगों की लिस्ट बना करके दुनिया के सबसे बड़े अरबपति और उनके लिए, वो स्वर्ग नहीं। जहां पर एक भी दुखी ना हो, जहां पर एक भी गरीब ना हो, सब सुखी हो, सब पवित्र हो, तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और उसकी इस प्रकार की याद से ही आत्मा को कमजोर करने वाले नफरत, हिंसा और अन्य विकारों रूपी शत्रु ठंडे हो सकते हैं, समाप्त किए जा सकते हैं। सोल कॉन्शियस होकर ही, मन की एकाग्रता से निर्णय भी यथार्थ लिए जा सकते, परखने की शक्ति भी अचूक काम करती है। तो हम कहां भी किसी भी कार्य की जिम्मेवारी निभा रहे हों, लेकिन अपने दयालु कृपालु क्षमा के सागर पिता से प्रेम का वार्तालाप मन ही मन कर सकते हैं। यही हमारे दुनियावी संबंधों में भी होता है। माँ कहीं जा रही है, बस में ट्राम में बैठी है, तो उसको अपने बच्चे की याद आती है, तो क्या वो उससे बात नहीं करते? तो ये देहधारियों के साथ मन का वार्तालाप है, जिन देहधारियों के साथ हम थोड़ा समय रहेंगे। तो अविनाशी आत्मा का अविनाशी पिता के साथ कितना प्रेम होना चाहिए। तो ऐसा जो दिनचर्या भी उन्हीं से शुरू हो और उन्हीं के साथ समाप्त हो, ऐसा प्रॉमिस, ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा प्रण हम कर अपने मन का बोझ, अपनी चिंताओं का बोझ हल्का कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं। तो भला जब बच्चे का हाथ बाप के हाथ में हो, तो हाथ में हाथ रखना अर्थात ये जानना कि मेरे पिता की मेरे लिए क्या आज्ञा है, क्या राय है, मुझे कैसे जीना है, मुझे कैसे सोचना है। और जब ऐसा उसकी मत का, उसकी राय का साथ मेरे हाथ में हो, तो मेरे हर कर्म का फल भी कैसा होगा। तो इसी को ही कर्मयोग कहते हैं। प्रेम पूर्वक हमें अपना कुछ काम रोकने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें कुछ अपना घर गृहस्थ छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। जहां हम हैं, जिस प्रोफेशन में हैं, जिस जिम्मेवारी को निभा रहे हैं करते हुए, बस अपने मन में संपूर्ण समर्पण कि आप सर्वशक्तिमान मेरे पिता हैं और आपकी ही आज्ञाओं से, आपके ही कथनों से मेरे जीवन का जो रास्ता है वो सहज हो सकता है। तो ये संबंध जोड़ना, इसको ही सच्चा प्रेम परमात्मा से जोड़ना कहते। और तब ही मेरी सब शक्तियां वापस मेरे पास आना शुरू करती हैं। और इसका आधार है ये याद। स्थिर तन और एकाग्र मन से अपने परम प्रिय परमात्मा की याद में मैं बहुत खुशी से मन की ऊंची उड़ान भरते हुए अपने अविनाशी शांति धाम पहुंचती हूं। प्रभु की संतान उच्च आत्मा के लिए सभी मनुष्य मात्र प्रिय भाई प्रिय जन है। इस एक घर से धरती पर पहुंचा हुआ ईश्वरी परिवार है, यही महसूसता, यही आत्मिक प्रेम विश्व शांति के सेतु का कार्य कर सकता है। अपने परम प्रिय पिता के संग में वही रस है, वही रसायन है जिसमें नफरत, कलह, कलेश, कटुता सभी समस्याएं घुल सकती हैं। यही राजयोगी जीवन, कर्मयोगी जीवन ही मेरे जीवन की दिशा है। स्नेह और सहयोग प्राप्त करने दूसरों को देने के लिए। हे मेरे पिता, मुझे आप बीच से अपना संबंध गहरा करना है। आपकी दृष्टि, आपका प्रेम मेरे जीवन का आधार है। आपकी उपस्थिति से हर कर्म स्पष्ट हो जाता है। आत्मिक स्थिति में मैं फिर से स्वशासन और संतुलित आचरण में रहते हुए आपकी सब शिक्षाओं को समझते हुए, उनका पालन करते हुए अपने हर कर्तव्य को अच्छी तरह से निभा सकती हूँ। यही सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है।
सुप्रीम सोर्स की ओर हमें ले चलने के लिए, गहन अनुभूति कराने के लिए दीदी आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सचमुच किसी ने सही कहा है कि जिस दिन आप परमात्मा में रुचि लेने लगेंगे तो परेशानियां आप में रुचि नहीं लेंगी, अर्थात परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। और गहन सी बात है मित्रों, बचपन में एक बात मैंने सुन रखी थी कि एक शेर का बच्चा छोटा था, वो भेड़ियों के झुंड के साथ शामिल हो गया और भेड़ियों जैसा ही बर्ताव करने लगा। ये भूल ही गया कि वो शेर है। लेकिन जब शेरों ने उसे देखा, उसके पास गया, तो वो भेड़ियों की तरह ही घबराने लगा कि ये मुझे मार ना दें। लेकिन उसे जबरदस्ती वो लेके पानी के तालाब के पास पहुंचे और कहा कि देख, तो भेड़िया नहीं है, तो हमारे जैसा है, शेर है। उसने अपने आप को देखा, अपने आप को पहचाना और दहाड़ उठा। हम भी अपने आप को भूले हुए हैं ऐसा लगता है कि हमारी पोटेंशियल क्या है, हम हैं कौन। हमारे पिता जो इतने महान हैं, सर्वशक्तिवान हैं, और हम अपने आप को दीनहीन समझते हैं। आवश्यकता है कि हम इस गहन अनुभूति को सतत बनाए रखें अपने साथ, ताकि हमारी शक्तियां कम ना हो। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आइए चलते हैं आज के सुंदर विषय पर, हार्नेसिंग ट्रू पोटेंशियल। इस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं जीबी पंत हॉस्पिटल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट भ्राता मोहित गुप्ता जी। बचपन से ही आप राजयोग का गहन अभ्यास कर रहे हैं। अपने मेडिकल फील्ड में आपने अनेक गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में आप अपने वक्तव्य देते रहते हैं। तो आइए अभिनंदन करते हैं और आज के विषय पर प्रकाश के लिए भ्राता मोहित जी को आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर मोहित गुप्ता जी,
ओम शांति। दोस्तों, एक बहुत सुंदर कहानी मेरी स्मृति में आती है। एक बारी की बात है कि एक कुम्हार था, बहुत सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाता था। एक दिन उसने एक बहुत सुंदर चिलम बनाई, उसको डेकोरेट किया और डेकोरेट करके उठाकर एक जगह रख दिया। सोचता रहा, कुछ स्मृति कुछ ख्यालों में चला गया और थोड़ी देर बाद उसने उस चिलम को तोड़ दिया। तो जो मिट्टी थी वो उस कुम्हार से पूछती है कि भैया, तुमने इतनी सुंदर चिलम बनाई, अब इसको तोड़ क्यों दिया? तो उसने कहा कि नहीं, मेरा मन बदल गया है, अब मैं एक सुराही बनाऊंगा। तो मिट्टी उससे बोली कि भैया, तुम्हारा तो मन बदला पर मेरी तो किस्मत बदल गई। तो उसने कहा, ऐसा क्यों कहती हो? तो उस मिट्टी ने बोला कि पहले आप चिलम बनाते तो मैं खुद भी जलती और औरों को भी जलाती, लेकिन अब आप एक सुराही बनाओगे तो मैं खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतलता दूंगी। दोस्तों, ये हमारे जीवन का सत्य है। अगर हम देखें कि जो विचार हम अपने मन में डालते हैं, वही विचार हमारे भविष्य को निर्मित करते हैं। आज जब संपूर्ण विश्व दर्द के अंदर है, कष्ट के अंदर है, और हर व्यक्ति परिवर्तन की गुहार लगा रहा है, परिवर्तन की मांग कर रहा है, रहम की भीख परमात्मा से मांग रहा है, ऐसे समय पर यदि हम बाहर बदलाव चाहते हैं दोस्तों, तो परिवर्तन हमें स्वयं अपने अंदर लाना पड़ेगा। अगर हम बाहर परिवर्तन की ही बात करते रहें तो कुछ भी नहीं बदलेगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि वही हमारे विचार, वही हमारी सृष्टि को रचते हैं। तभी किसी ने कहा है कि इफ यू डोंट चेंज एनीथिंग, नथिंग इज गोइंग टू चेंज आउटसाइड। अगर आप स्वयं कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे तो बाहर कुछ भी परिवर्तित नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, आज बहुत आवश्यक है कि यदि हम अपने जीवन में उस खोई हुई सुख और शांति को दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हम उस आनंद का दोबारा अनुभव करना चाहते हैं, यदि परमात्मा के साथ का अनुभव करना चाहते हैं, उन खोए हुए उल्लास भरे दिनों को अपने जीवन में वापस लाना चाहते हैं दोस्तों, तो अपने संकल्पों का परिवर्तन आज अनिवार्य है। हमारे संकल्प ही हमारी सृष्टि को रचते हैं। आपको मालूम है कि हमारे एक दिन के अंदर एक मानव करीब 50 से 60 हजार संकल्प उत्पन्न करता है। और आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि उन 50 से 60 हजार संकल्पों में करीब 95% हमारे विचार वो तो नकारात्मक होते हैं, वो रिपीटेटिव होते हैं, वो वेस्ट होते हैं, वो यूजलेस होते हैं। अब आप सोचिए कि एक फैक्ट्री में से 50 हजार प्रोडक्ट्स में से अगर 95% जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूजलेस हैं, रिपीटेटिव हैं, तो ऐसी फैक्ट्री को क्या हम पॉजिटिव या यूजफुल फैक्ट्री कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे दोस्तों। केवल 5% हमारे विचार ही सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, पर्पसफुल हैं, और यही हमारी जिंदगी को निर्णित करते हैं, हमारी जिंदगी को मार्गदर्शन देते हैं। तो आज हमें क्या करना होगा? आज अपने इन्हीं विचारों के ऊपर हमको संयम लाना पड़ेगा दोस्तों। हमारे विचार हमारी आत्मा के मन से निकलते हैं। मन हमारी आत्मा का सबसे सुंदर वाहन है, और ये तो हम जानते ही हैं। जैसे आत्मा सोचती है मन के द्वारा, निर्णय लेती है बुद्धि के द्वारा, और जब मन और बुद्धि दोनों इकट्ठे कार्य करते हैं, समन्वयता में कार्य करते हैं दोस्तों, तो हमको संस्कार मिलते हैं, हमारे लाइफ में हम हैबिट्स जनरेट करते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे तथ्यों पर विचार करेंगे जिसके द्वारा हम अनुभव करेंगे कि यदि हम अपने विचारों को संयम में लाएं, यदि हम अपने मन को अपना मित्र बनाएं, ध्यान से सुनिएगा, मन को मित्र बनाना है, मन के ऊपर कंट्रोल नहीं करना। मन एक बच्चा है, और अगर बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको छकाकर भाग जाएगा। इसलिए उस मन को अपना मित्र बनाना है, उसको अपना साथी बनाना है। और यदि ऐसे मन को हम अपना मित्र बनाते हैं, अपना साथी बनाते हैं दोस्तों, तो हम मन को अपने अनुसार कार्य पर लगा सकते हैं। यही तो सेल्फ सोवरेनिटी कहलाती है, यही हमारा इनर किंगडम है। हमारा आउटर किंगडम इज कंट्रोल्ड बाय अवर इनर किंगडम, यानी हम स्वयं अपने आत्मिक स्वरूप में जब स्थित होते हैं, हमारा एक एक संकल्प शक्तिशाली होता है दोस्तों, तो हमारी संपूर्ण सृष्टि हमारे अनुसार चलती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा संकल्प हमारे जीवन में हमको व्यवहार देता है, और हमारे व्यवहार ही हमको अनुभव की यात्रा पर ले जाते हैं, और वही अनुभव हमारे संकल्पों के ऊपर दोबारा प्रभाव डालते हैं। तो यदि सकारात्मक संकल्प हमारे होंगे, प्रभु प्रिय संकल्प होंगे, प्रभु प्रेरित हमारे संकल्प होंगे, तो हमारा व्यवहार कैसा होगा? हमारे व्यवहार में भी शालीनता होगी, हमारे व्यवहार में भी ग्रेस होगी, व्यवहार में भी प्यार होगा, शांति होगी। और यदि हमारा व्यवहार ऐसा होता है तो हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस कैसे होंगे? वो भी पावरफुल होंगे, वो भी प्योर होंगे, और वो भी पॉजिटिव होंगे। तो यदि ये तीनों चीजें समन्वयता में कार्य करेंगी तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। तभी कहते हैं अगर हम अपने माइंडसेट को चेंज करते हैं तो हमारा आउटर लाइफ चेंज हो जाती है। या यूं हम कहें कि व्हेन थिंग्स चेंज इनसाइड अस द थिंग्स आउटसाइड ऑटोमेटिकली चेंज। तो क्या हमारे विचार, हमारे शरीर, हमारे बॉडी के जीन्स पर, हमारे रिलेशंस पर, हमारे एनवायरमेंट पर प्रभाव डालते हैं? क्या ऐसा हमारे पास कोई तथ्य है? और यदि हमको विचारों को समन्वयता में लाना है, उनको अपना मित्र बनाना है, अपने अनुसार चलाना है, तो इसका क्या तरीका होगा? आइए चलो इन्हीं बातों पर हम कुछ प्रकाश डालते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बहुत सुंदर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें यह दिखाया गया कि कुछ कैंसर के पेशेंट्स को उन्होंने लिया जिनको प्रोस्टेट कैंसर था, और उनको दवाइयों के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सिखाई गई, मेडिटेशन सिखाया गया, और कुछ समय तक जब उनको फॉलो किया गया तो कुछ ही हफ्तों बाद जब उनके जीन्स को एनालाइज किया तो उसमें दिखाया कि उनकी जितनी भी कैंसर कॉजिंग जीन्स थी वो डाउन रेगुलेट हो गई, अर्थात उनका एक्सप्रेशन कम हो गया और जो पॉजिटिव जीन्स थी, प्रोटीन बिल्डिंग जीन्स थी, उनका एक्सप्रेशन धीरे धीरे अप हो गया। अर्थात पहली बार ये साइंटिस्ट के सामने आया कि अगर हम अपने विचारों को, अपने लाइफस्टाइल को पवित्र बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं, पावरफुल बनाते हैं, तो ये हमारे बॉडी के जीन्स पर भी पावरफुल प्रभाव डालता है। और इसी साइंस को एपिजेनेटिक्स कहा जाता है। अर्थात आप अपनी जीन्स को चेंज नहीं कर रहे, लेकिन उनके ऊपर जो कंट्रोल सेंटर है, वो तथ्य, वो प्रोडक्ट्स या वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स जो उन जीन्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, अर्थात खुशी की जीन को एक्सप्रेस करेंगे या नेगेटिव जीन को और दर्द की जीन को स्विच ऑफ कर देंगे, तो ये तो कमाल की बात है। ऐसा राजयोग मेडिटेशन के अंदर प्रभाव है। यदि हम लोग मेडिटेट करते हैं तो अपनी बीमारी और अपनी जीन्स के ऊपर भी दोस्तों विजय प्राप्त कर सकते हैं, और ये एक अद्भुत तथ्य है। ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स में हमने भी देखा कि जो यंग बच्चे थे, जो हार्ट अटैक के मरीज बनकर आ रहे थे, केवल 18 से 30 साल की उम्र उनकी थी, और जब हमने उनको एग्जामिन किया, उनके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च की, तो हमने पाया कि शारीरिक रूप से तो वो 18 से 30 साल के हैं, लेकिन जब उनकी जीन्स को स्टडी किया तो उनकी जीन्स के अंदर हमने पाया कि उन जीन्स की उम्र 60 से 70 साल के बीच में है। ऐसा क्यों? ना तो वो शुगर के मरीज थे, ना वो स्मोकिंग करते थे, ना वो उनके पास कोई फैमिली हिस्ट्री थी, लेकिन फिर भी ऐसा उनके जीवन में क्या चल रहा था कि उनकी जीन्स की एज सिग्निफिकेंटली ज्यादा थी। और जब हमने रिसर्च किया तो उसमें पाया कि ऐसे बच्चे, उनके जीवन में पर्सनल स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस और जनरल स्ट्रेस जो है वो सिग्निफिकेंटली हाई था, प्रोफेशनल स्ट्रेस बहुत हाई था। और साइंस आज ये हमको बताती है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में खुशी का अनुभव नहीं करते, जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर लैक ऑफ पर्पस फील करते हैं, थैंकफुल नहीं होते, प्यार का संबंधों में अनुभव नहीं है, ऐसे बच्चों के अंदर जो जीन्स की लेंथ है, जो टेलोमियर लेंथ है जिसको हम बोलते हैं, वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। ये लेंथ हमारे क्रोमोसोम्स को कंट्रोल करती है, और जब ये लेंथ कम हो जाती है तो क्रोमोसोम्स के अंदर जो जीन्स हैं वो फास्ट एक्सप्रेस करती हैं और बीमारियां तेजी से बढ़ने लगती हैं। तो आज इसी के साथ उन्होंने ये भी बोला कि यदि हम अपने संबंधों में प्यार बनाकर रखें, थैंकफुलनेस बनाकर रखें, यदि हम अपने संबंधों में एक दूसरे के प्रति एक्सेप्टेंस लाएं, अपने जीवन में एक पर्पस लाएं, एक खुशी लाएं, अपना माहौल बहुत सुख और शांति से परिपूर्ण बनाएं, तो ऐसे लोगों की, ऐसे व्यक्तियों की जो जीन्स हैं वो पावरफुल तरीके से प्रोटेक्टेड रहती हैं, और यदि प्रोटेक्टेड रहती हैं तो इनके अंदर बीमारी होने का चांस सिग्निफिकेंटली कम होता है। तो शक्ति किसके पास है? शक्ति केवल शरीर के पास नहीं दोस्तों, शक्ति इस शरीर के अंदर ही विद्यमान हमारी आत्मा, हमारे थॉट्स उसके पास है। यदि हम अपने इनर पोटेंशियल को हार्नेस करते हैं, यदि हम अपने मन की शक्ति को कार्य में लाते हैं, तो हम अपने शरीर की संरचना को भी संयम में ला सकते हैं, उसको भी दोस्तों हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ जब आगे एक्सपेरिमेंट्स हुए तो उन्होंने अनुभव किया कि क्या हमारे विचारों का हमारे शरीर पर भी प्रभाव डलता है, क्या ये पॉसिबल है? तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स में ये दिखाया गया। एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट हैं, फेमस साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर मॉसले, उन्होंने जो मरीज थे वो जोड़ों के दर्द के मरीज लिए, जो नी आर्थराइटिस थी उनके पास, जिनको ऑस्टियो आर्थराइटिस थी, और उन मरीजों को उन्होंने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक ग्रुप को उन्होंने एक्चुअली नी सर्जरी के लिए सब्जेक्ट किया, उनकी एक्चुअली ऑपरेशन किया गया, और दूसरे ग्रुप को उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, वहां ले जाकर उनको एनेस्थेटाइज किया, उनको बेहोश किया, और बेहोश करके उनके नी को खोला, लेकिन बिना टच करे, बिना कुछ करे उस नी को क्लोज करके बाहर उनको ऑपरेशन थिएटर रिकवरी रूम में लिटा दिया। लेकिन उनको यही बताया गया कि उनकी सर्जरी हो चुकी है, वो बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ग्रुप्स को यह मालूम था कि उनकी सर्जरी हुई है, लेकिन एक्चुअली सर्जरी एक ही ग्रुप की हुई थी। और दोस्तों जब फॉलो अप किया गया तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जिनकी सर्जरी एक्चुअली में हुई थी और जिनकी सर्जरी नहीं हुई थी, दोनों ग्रुप्स के अंदर पेन का इंप्रूवमेंट, दर्द का इंप्रूवमेंट सिग्निफिकेंटली सेम दिखा गया। ऐसा कैसे संभव है? ऐसा तभी संभव है कि जब हमारे विचारों ने, हमारे मन ने ये एक्सेप्ट किया कि मेरी सर्जरी हो गई है और मैं अब बिल्कुल ठीक हूं, तो उस दर्द की महसूसता उन मरीजों में जिनके अंदर सर्जरी नहीं हुई थी, उनकी महसूसता भी कम होती गई और उन्होंने अपने आप को स्वस्थ महसूस किया। और ये तो हम डेली अपनी लाइफ में देखते हैं, जब हमारा मन खुश है, जब हम आनंद में हैं, तो बीमारी होते हुए भी हमको क्या लगता है, हम अपने आप को बहुत आनंदित महसूस करते हैं, बहुत खुश महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हमारा मन कष्ट में होता है तो शरीर ठीक होते हुए भी हमको बीमार महसूस लगता है, हमको कष्ट महसूस देता है। तो इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। अर्थात यदि हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, यदि हम आशावादी नेचर के हैं, यदि हम सजेस्टिबल हैं, अपने मन के संकल्पों को सकारात्मक रखते हैं, तो हमारे मन के संकल्प हमारी शरीर की बीमारी की महसूसता को भी कम कर देते हैं और उसके इम्यून सिस्टम को भी पावरफुल कर देते हैं और हम हीलिंग की तरफ अपने आप को ले जाने लगते हैं। इसी का ऑपोजिट होता है नोसीबो इफेक्ट। अगर संकल्प पॉजिटिव होते हैं तो हमारे नेगेटिव संकल्प भी हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये नोसीबो इफेक्ट क्या कहता है कि कई बार हम अपनी जिंदगी में कहेंगे, कहीं मुझे ऐसी बीमारी ना हो जाए, कहीं आज के समय में हमको ये ना हो जाए, कहीं ना कहीं हम नेगेटिव सोच लाते जाते हैं और नेगेटिव सोच जो है उस बीमारी को हमारी तरफ आकर्षित करती है और ना चाहते हुए भी, ना होते हुए भी हम उस बीमारी के शिकार दोस्तों हो जाते हैं। तो ये क्या शो करता है कि जो शक्ति है वो बाहर तो है, लेकिन बाहर से कई 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 गुना ज्यादा वो शक्ति हमारे मन से कार्य करती है। हमारे संकल्पों की शक्ति, हमारी आत्मा का जो मन है और मन के जो संकल्प हैं, उसकी शक्ति हमारे शरीर को भी संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है, उसको भी ट्रांसफॉर्म कर सकती है। और यही नहीं, कुछ लोगों ने यहां तक भी एक्सपेरिमेंट्स किए कि कुछ बच्चों को उन्होंने दो ग्रुप्स में बांटा। एक ग्रुप को उन्होंने एक्चुअली पियानो प्ले करना सिखाया और एक ग्रुप को केवल पियानो की फोटो दिखाई और उनको इमेजिन कराया कि ऐसे कि वो पियानो प्ले कर रहे हैं। तो दो ग्रुप्स थे, जो कि पियानो एक्चुअली प्ले कर रहे थे, उसको बजा रहे थे, और दूसरा ग्रुप जो केवल पियानो को इमेजिन कर रहा था कि वो पियानो को प्ले कर रहा है। और दोनों ग्रुप्स को उन्होंने कुछ समय बाद उनके ब्रेन का एमआरआई किया और जानते हैं रिजल्ट क्या रहा। जब उन्होंने एमआरआई कर उसका रिजल्ट देखा तो उन्होंने पाया कि जो बच्चे एक्चुअली पियानो प्ले कर रहे थे और जो बच्चे जो कि केवल इमेजिन कर रहे थे कि वो पियानो प्ले कर रहे हैं, दोनों ग्रुप्स के अंदर सिमिलर ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो एक्सपैंड हुआ। अर्थात जो हमारे ब्रेन का फिंगर यानी पियानो प्लेइंग फिंगर एरिया है वो सिमिलरली एक्सपैंड हुआ। और ये क्या शो करता है कि केवल हमारे विचारों के द्वारा ही करने की जरूरत नहीं है, हम बाद में भी करें या करें या ना करें, लेकिन हमारे विचार ही हमारे ब्रेन के पैटर्न को कंप्लीटली चेंज कर देते हैं। दोस्तों, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अर्थात जब हम लगातार अपने जीवन में नकारात्मक विचार लाते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़कर वो नेगेटिव पाथवेज को स्ट्रांग कर देते हैं, हार्ड वायर कर देते हैं। और अगर हम अपने जीवन में खुशी के विचार लाते हैं, सकारात्मक विचार लाते हैं कि मैं स्वस्थ हूं और स्वस्थ रहूंगा, मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा होगा, सब कुछ कल्याणकारी होगा, तो वो सारे न्यूरॉन्स अगेन जुड़कर अपने आप को हार्डवायर करते हैं और एक पॉजिटिव पाथवे बनाते हैं, जिसको हम ये भी कहते हैं हार्डवायरिंग हैप्पीनेस और हार्डवायरिंग लव और हार्डवायरिंग हार्मनी इन अवर लाइफ। इस पर साइंटिफिक रिसर्च भी हुई है। डॉक्टर कैंडल ने, जिनको नोबेल प्राइज मिला था, उन्होंने यही दिखाया कि दो वो नर्व सेल्स जो कि साथ फायर करते हैं वो साथ ही वायर करते हैं। तो अगर हम लोग अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, अगर हम अपनों जिंदगी में परिवर्तन चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, तो क्या हम खुशी बाहर ढूंढने जाएंगे? क्या हम शांति को बाहर ढूंढने जाएंगे? नहीं दोस्तों, उस खुशी और शांति को हमें स्वयं अपने मन में क्रिएट करना होगा। और जब बार बार एक ही संकल्प हम अपने मन में क्रिएट करेंगे कि मैं खुश हूं, मैं शांतमय हूं, मेरे जीवन में सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ आनंदित है, तो मेरे नर्व सेल्स उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, मेरे ब्रेन की जो सारे न्यूरल पाथवेज है वो उसके अकॉर्डिंग एक्टिवेट होंगे और वो दोस्तों हार्डवायर हो जाएगा। तभी कहा जाता है कि संकल्प के द्वारा हम सृष्टि रच सकते हैं। हमारा एक एक विचार हमारे जीवन में हमारा भविष्य क्रिएट कर रहा है। हमारा एक एक विचार हमारे जीवन में ना केवल हमारा लेकिन संपूर्ण विश्व के भविष्य को भी दोस्तों परिवर्तित कर रहा है। इसी के साथ आज बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और पावरफुल एक्सपेरिमेंट्स में ये भी दिखाया गया है कि कई मरीज जो कि कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं, ऐसी बीमारियों के अंदर भी उन्होंने अपने संकल्पों के द्वारा विजय प्राप्त की है। ऐसे अनेकों अनेक एग्जाम्पल्स आज हमारे सामने हैं। हमारे अपने ही स्वयं के जीवन के अंदर कितने ही राजयोगी ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने डिफिकल्ट सिचुएशंस में, कठिन परिस्थितियों में राजयोग के अभ्यास द्वारा, उस जीवन शैली को अपने जीवन में अपनाने के द्वारा अपने मस्तिष्क के ऊपर, अपने ब्रेन के ऊपर, अपने अलग अलग बीमारियों के ऊपर भी दोस्तों विजय प्राप्त की है। मुझे भी अपने जीवन में एक छोटा सा अनुभव ध्यान आता है कि जब 2003 के अंदर मुझे ब्रेन का एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन हुआ था और उस इन्फेक्शन के लिए मैं कितनी ही गोलियां खाता था, अल्टीमेटली उसका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद एक और ब्रेन के अंदर मेरा इन्फेक्शन आ गया। लेकिन उस समय दवाइयां भी लिमिटेड असर कर रही थी और लोग यही कहते थे कि इसकी सर्जरी नहीं हो सकती है। तो एक साल तक उस राजयोग का भरपूर और उचित रूप से अभ्यास मैंने अपने जीवन में किया। पानी को मैं रोज चार्ज करके पीता था और रोज मॉर्निंग में पावरफुल मेडिटेशन करता था, अपने मन को संकल्प देता था कि मेरा ब्रेन बिल्कुल शक्तिशाली है, उस पर कोई भी बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और कुछ समय के अभ्यास के बाद, करीब एक साल बाद, जब मेरे ब्रेन के स्कैन्स को रिपीट किया गया तो ब्रेन से वो मास कंप्लीटली गायब हो चुका था। और ऐसे अनेकों अनेक एग्जाम्पल्स आज हमारे सामने हैं। ये शो करता है कि जहां साइंस अपना कार्य कर रही है, वहीं हमारी मन की शक्ति, जिसको आज हमने हार्नेस नहीं किया है, जिसको आज हमने रियलाइज नहीं किया है, वो अद्भुत शक्ति है। उसका पोटेंशियल बहुत 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 ज्यादा है। उस शक्ति को जब हम रियलाइज करते हैं दोस्तों, तो वो साइंस को कॉम्प्लीमेंट करती है। तो अध्यात्म और साइंस ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए दोस्तों आगे चलते हैं। इसी प्रकार आज हम अपनी लाइफ में देखें, अपने संबंधों को अपने सामने लेकर आए। आज हमारे जीवन में खुशी जाने का बड़ा कारण क्या होता है? संबंधों में मनमुटाव, एक दूसरे के प्रति एक्सेप्टेंस का ना होना, क्रोध का आना, इरिटेशन का आना, नकारात्मकता का आना, ऐसे ऐसे भाव स्वभाव जब हमारे जीवन में आते हैं तो कहीं ना कहीं हमको कष्ट होता है, कहीं ना कहीं हमको दुख होता है और हम परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, हम आज अब एक दूसरे से मुख से बातें करते हैं, लेकिन हमारी संकल्पों की शक्ति यदि श्रेष्ठ है और पावरफुल है, तो हम ना केवल अपना लेकिन अपने परिवार का और लोगों के मन को भी हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग जब घर पर आते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं, खुशी का माहौल अपने साथ लेकर आते हैं, तो घर का एनवायरमेंट ही परिवर्तित हो जाता है। और कई लोग आएंगे, वो अपने साथ इतनी नेगेटिव एनर्जी लेकर आएंगे तो घर का एनवायरमेंट क्या होगा, वो डाउन हो जाता है। तो क्या चीज परिवर्तित कर रही है? वो हमारा ऑरा, हमारा आभा मंडल, वो हमारे एनवायरमेंट को डिटरमिन करता है। और वो आभा मंडल कैसे बनता है? वो आभा मंडल फिर दोस्तों हमारे मन की शक्तियों के द्वारा बनता है, हमारे मन की पावर्स के द्वारा बनता है। तो यदि हम अपने मन का आभा मंडल, अपने परिवार का आभा मंडल को परिवर्तित करना चाहते हैं, उसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, उसको शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो उसका तरीका है कि अपने संकल्पों को हर आत्मा के प्रति प्रेम से परिपूर्ण करें। मैं तो आपको केवल चार संकल्प दूंगा और इन चार बातों को आप केवल एक दिन के लिए अपने मन में जरूर रखिए। और ये चार बातें हैं कि सर्व के प्रति कैसी भी आत्मा, किसी भी प्रकार की आत्मा मेरे सामने आए, उसके लिए प्यार की भावना, बहुत प्यार, असीम प्यार, अनकंडीशनल लव। जैसे परमात्मा हमको अनकंडीशनल लव देता है, ऐसे ही हम उस आत्मा को भी अनकंडीशनल लव दें। और दूसरी भावना, शांति। आज जब संपूर्ण विश्व में आत्माएं दुख और रहम की गुहार लगा रही हैं, ऐसे समय में अपने संकल्पों को परमात्मिक शांति से भरना और इस शांति को संपूर्ण विश्व में रेडिएट करना, ये अनिवार्य है, ये हमारा कर्तव्य है। और इसी के साथ जो तीसरी बात जो हमें अपने मन में जरूर रखनी है, वो है करुणा। जब हमारे मन के संकल्प एक दूसरे के प्रति कंपैशन की भावना को रेडिएट करते हैं, करुणा की भावना को रेडिएट करते हैं, तो दोस्तों हम अनेकों अनेक आत्माओं के जीवन में एक सुंदर आशा का दिया जलाते हैं और यही दिया उनके जीवन में पुनः प्यार को, पुनः विश्वास को और पुनः शांति को प्रज्वलित कर देता है, उसको जागृत कर देता है। और चौथी भावना जो हमको हर एक के लिए रखनी है, वो है ग्रैटिट्यूड, अर्थात शुक्राना। परमात्मा के लिए धन्यवाद, स्वयं के लिए धन्यवाद, प्रकृति के लिए धन्यवाद और हर उस आत्मा के लिए धन्यवाद जो आज हमारे साथ है, इस समय पर हमारे साथ खड़ी है। दोस्तों, ये भावनाएं जब हमारे मन से, हमारे संकल्पों से और हमारे दिल से निकलती हैं, तो ये भावनाएं अनेकों अनेक आत्माओं को सुख और शांति देने के कारण बन जाती हैं, उसके लिए एक मायना बन जाती हैं, उसके लिए एक प्रवाह की तरह प्रज्वलित करती हैं। तो दोस्तों, आज बहुत बहुत आवश्यक है कि हम अपने मन के संकल्पों को भी इन चार सुंदर भावनाओं से भरें और हर एक को ये पावरफुल वाइब्रेशंस हम लोग रेडिएट करें। दोस्तों, यही नहीं, आज के इस समय पर जब हम भोजन खाते हैं, जब हम पानी पीते हैं, तो आज ये बहुत आवश्यक है कि घर में खाना खा रहे हैं, घर में खाना पक रहा है, घर में हम भोजन खा रहे हैं, इस वोकैबुलरी को भी आज हमको चेंज कर देना चाहिए। आज हमको एक शब्द को यूज करना है और सवेरे, दोपहर और शाम करना है और बार बार करना है, और वो शब्द है कि जब भी हम भोजन खाएं और जब भी हम पानी पिए, तो हमको यह कहना है कि हम परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद खा रहे हैं, हम परमात्मा का दिया हुआ ये एनर्जाइज्ड वाटर पी रहे हैं। और इसके लिए क्या करना है कि भोजन तो हम भले प्रोटीन्स और एनर्जी युक्त खाते हैं, लेकिन उस भोजन को, शाकाहारी भोजन को, परमात्मा के प्यार से, परमात्मा की स्मृति से और शांति से और शक्ति से उसको शक्तिशाली बनाना है। ये कब पॉसिबल होगा? जब हम उस स्मृति में बैठेंगे और परमात्मा की याद में बैठकर उस भोजन के अंदर पावरफुल वाइब्रेशंस देंगे, शक्ति देंगे। हमारे पावरफुल वाइब्रेशंस, हमारे पावरफुल शक्ति हमारे भोजन को एनर्जाइज करती है, उसको शक्तिशाली बनाती है, और ये भोजन प्रसाद का रूप ले लेता है। तो आज कभी भी और किसी भी परिस्थिति में हम लोग हो, चाहे कोई भी चीज़ हम खाएं, शाकाहारी भोजन खाएं, लेकिन कोई भी चीज़ हम खाएं, उस समय पर उसको भोग लगाकर खाएं, परमात्मिक स्मृति के साथ खाएं, उसको प्यार से परमात्मा को स्वीकार कराकर खाएं। आप सोचिए ना, यदि हम रोज परमात्मा को भोजन स्वीकार कराएंगे, तो परमात्मा क्या कहता है कि जो बच्चे मुझे भूखा नहीं रखते, मैं उनको भी कभी भूखा नहीं रखूंगा। और दोस्तों, आखिरी बात जो बहुत बहुत आवश्यक है, वो जरूरी है कि आज हमारे संकल्प जो हैं, हमारे मन के अंदर ही नहीं, हमारे संपूर्ण विश्व में भी रेडिएट करते हैं। और अगर इस विश्व के वाइब्रेशंस को हमें नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना हो, तो ये जरूरी नहीं है कि विश्व की सभी आत्माएं ही अपने संकल्पों को परिवर्तित करें, लेकिन अगर हम कुछ आत्माएं और आप जैसे श्रेष्ठ आत्माएं अगर अपने संकल्पों को पावरफुल बनाएंगी, अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाएंगी, अपने संकल्पों को परमात्मिक स्मृति से भरेंगी दोस्तों, तो ये जीवन जो है श्रेष्ठ बन जाएगा। इस पर बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट्स अमेरिका में हुए हैं, जहां उन्होंने दिखाया कि कुछ समय की मेडिटेशन के द्वारा ही, जब वॉशिंगटन सिटी में क्राइम बहुत बढ़ रहा था, नेगेटिविटी बहुत बढ़ रही थी, ऐसे समय पर केवल 6 हफ्ते की मेडिटेशन केवल 3000 योगियों ने की, और 3000 योगियों ने जो लाखों लोगों की सिटी के अंदर था, वहां पर उन्होंने जब 6 हफ्ते आधा घंटा मेडिटेशन की, तो क्राइम रेट, रेप रेट्स, होमिसाइड रेट्स और असॉल्ट रेट्स जो हैं, वो ऑलमोस्ट 25% दोस्तों कम हो गए। ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है कि जब हम कलेक्टिवली कार्य करते हैं और कलेक्टिवली पॉजिटिव कार्य करते हैं दोस्तों, तो हमारे संकल्प एक बहुत बड़ी परिवर्तन की अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। और आखिरी बात, अगर हम अपनी इन शक्तियों को हार्नेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? आपके मन में प्रश्न उठता है ना कि भाई, ये शक्तियां तो मेरे अंदर है, लेकिन इसको मैं अपने कंट्रोल, अपने अंदर कैसे लाऊं? उसके लिए दोस्तों, मेडिटेशन का अभ्यास सबसे सुंदर तरीका है। राजयोग मेडिटेशन एक बहुत सुंदर प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया क्या करती है, जैसे आप अपने टेलीविजन को, अपने मोबाइल को, अपने लैपटॉप को, अपने सारी मशीन्स को चार्ज करते हैं, क्योंकि वो पूरे दिन कार्य करती हैं, और अगर चार्जिंग खत्म हो जाए तो उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। इसी प्रकार राजयोग मेडिटेशन द्वारा हम अपने मन को चार्ज करते हैं। दोस्तों, मन तो आपका पूरे दिन चलता रहता है, लेकिन पूरे दिन इस चलते हुए, दौड़ते हुए मन को, या पूरे दिन की बात छोड़िए, पूरी जिंदगी से ही दौड़ते हुए इस मन को कभी आपने चार्ज करने की कोशिश की? कभी आपने इसको शक्तिशाली संकल्प दिए? दोस्तों, इसी प्रक्रिया को मेडिटेशन कहा जाता है। जब मेडिटेशन में हम अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित होते हैं, और उस आत्मिक स्मृति में स्थित होकर उस परम पिता परमात्मा, जो कि महाज्योति है, शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, सर्व गुणों का सागर है, उससे हम सर्व गुणों को अपनी आत्मा के अंदर प्रवाहित होते हुए देखते हैं। ऐसी गुणों को जब हम अपने आत्मा के अंदर प्रज्वलित होते हुए देखते हैं दोस्तों, तो हमारा एक एक संकल्प श्रेष्ठ बन जाता है। परमात्मा जो शांति का सागर है, जो प्यार का सागर है, जो खुशी का सागर है, जो ज्ञान का सागर है, जो पवित्रता का सागर है, जब ये पावरफुल वाइब्रेशंस हमारी आत्मा के अंदर आती हैं और हमारी आत्मा को सुख और शांति का अनुभव कराती हैं दोस्तों, तब हमारी आत्मा आनंद का अनुभव करती है, ब्लिस का अनुभव करती है, जिसको हम कहें हैप्पीनेस बियॉन्ड सेंसेस। यही आरंभ होता है अपने मन की शक्तियों को स्वयं के अंदर जागृत करना, यही आरंभ है अपने मन की शक्तियों को एक परिवर्तन की तरफ यूज करना और एक सुंदर जीवन का आरंभ करना। तो दोस्तों, परिवर्तन की जो बेला है, ये परिवर्तन की बेला आज है और परिवर्तन करने का सबसे उचित समय भी दोस्तों अभी है। इस सुंदर बेला का और इस सुंदर समय का उपयोग करते हुए चलिए हम एक बहुत सुंदर यात्रा पर चलते हैं। कुछ पल एक गहरा सांस लेते हुए परमात्मिक प्यार को अपने शरीर के अंदर इस सांस को लेते हुए अनुभव करें कि शरीर का एक एक अंग निरोगी है, शांत है, स्वस्थ है और बाहर सांस छोड़ते हुए अनुभव करें परमपिता परमात्मा के प्रति, सर्व आत्माओं के प्रति शुक्रिया की भावना। शरीर को ढीला छोड़ते हुए अपने आप को एक शक्तिशाली ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखें। पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में देखें। परमपिता परमात्मा से शांति की शक्ति, प्यूरिटी की शक्ति, प्यार की शक्ति, खुशी की शक्ति मुझे आत्मा को असीम आनंद का अनुभव करा रही है। अनुभव करें एक अनोखे चैन का, एक अनोखी शांति का। मेरे मन का एक एक संकल्प शक्तिशाली है, परमात्मिक प्यार और प्यूरिटी से परिपूर्ण है। यही शक्तिशाली संकल्प एक पावरफुल आभा मंडल मेरे अराउंड निर्मित करता है और मैं सर्व बीमारियों से, सर्व नकारात्मक भावनाओं से प्रोटेक्टेड हूं। परमात्मा मेरी बैकबोन है। अनुभव करें यही शक्तियां विश्व की सब आत्माओं के लिए शांति, प्यार, आनंद और खुशी का अनुभव उनके जीवन में प्रवाहित कर रही है। यही श्रेष्ठ संकल्प, परमात्मिक स्मृति के संकल्प हर आत्मा को सुकून का अनुभव करा रहे हैं। इसी स्थिति में स्थित रहते हुए अपने मन को शक्तिशाली महसूस करें, शांत महसूस करें। ओम शांति।
हमें एक नई दिशा दिखाने के लिए, हमें नया जोश, उत्साह और ऊर्जा भरने के लिए डॉक्टर मोहित जी आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सच में सुना करते थे कि आइसबर्ग का 10% ही ऊपर होता है, 90% अंदर होता है। आज आपने उसे बहुत गहराई से स्पष्ट किया कि कैसे उस 90% भाग को हम एक्सप्लोर करें जो हमारे अंदर समाहित है, कैसे अपनी पोटेंशियल को सही सही रूप से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और मेडिटेशन कैसे उसमें कारगर है। कई बार हम सुनते बहुत हैं लेकिन हमें खुद ये लगता नहीं कि मैं कर सकता हूं। लेकिन जब हम किसी का अनुभव सुनते हैं कि नहीं किसी ने ऐसा किया है, तो ये विश्वास हो जाता है कि हाँ ये कार्य मैं भी कर सकता हूं। क्योंकि अनुभव हमारे विश्वास को बहुत पुख्ता करते हैं, मजबूत करते हैं, हम में भी बल भर देते हैं कि नहीं जब एक व्यक्ति कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। जब एक व्यक्ति को ईश्वर की इस प्रकार से मदद मिल सकती है तो तुम्हें भी क्यों नहीं मिल सकती। इसीलिए आज के सुंदर विषय पर अपने गहन और सुंदर अनुभव के साथ अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं कमोडोर ए घोषाल, रिटायर्ड, जिन्होंने 35 वर्षों तक नेवी में अपनी सुंदर सेवाएं प्रदान की और पिछले 6 वर्षों से आप राजयोग का गहन अभ्यास कर रहे हैं।
मेरा नाम कमोडोर आनंदमय घोषाल है। मैंने नेवी में 1976 से लेकर 2011 तक सर्व किया है। मेरा लास्ट पोस्टिंग था कमांडिंग ऑफिसर आईएनएस इंडिया एंड स्टेशन कमांडर नेवी दिल्ली एरिया। नेवी ने मुझे 6 कमांड दिए, शिप्स एस्टैब्लिशमेंट्स के, 2 फॉरेन पोस्टिंग्स दिए और कई इम्पोर्टेंट असाइनमेंट्स दिए। नेवी में ज्यादातर मेरी टेन्योर्स जो थी वो मिसाइल से कनेक्टेड थी। मिसाइल्स के बारे में पढ़ना, क्रूज को ट्रेन करना, खुद फायरिंग करना, सेफ्टी ऑफिसर बनना और एज कमोडोर मैं स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में भी सर्व किया। 1999 से 2002 मेरी पोस्टिंग थी हाई कमीशन ऑफ इंडिया नैरोबी कीनिया में एज डिफेंस एडवाइजर विथ कंकरेंट एक्रेडिटेशन टू तंजानिया एंड सेशेल्स। मैं इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था और इन तीनों देशों में उनके तीनों फोर्सेस से मैं इंटरेक्ट करता था। रिटायरमेंट के बाद मैं ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग मेडिटेशन के बारे में जाना, मुझे ज्ञान मिला अपना और सुप्रीम सोल के सही पहचान का, और मुझे ये भी मालूम चला कि सुप्रीम सोल से कनेक्ट करने के लिए मेडिटेशन टेक्निक क्या है। उस समय मुझे ये फील हुआ कि अगर ये नॉलेज मुझे पहले मिल जाती तो लाइफ बहुत ही आसान हो जाती। मेरा संपर्क हुआ स्कॉर्डिनेटर अशोक गाबा से, जो सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के चेयरपर्सन हैं। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया SSW के फैकल्टी मेंबर बनने के लिए। ब्रह्मा कुमारी की अनुभवी बहनें और अनुभवी भाइयों के साथ मुझे मौका मिला जगह जगह जाके इरेडिकेशन ऑफ स्ट्रेस एंड एनहांसिंग इनर स्ट्रेंथ के बारे में प्रोग्राम में भाग लेने का। एडमिरल सुनील लांबा चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे, वाइस एडमिरल अनिल चावला, वाइस एडमिरल अतुल जैन और वाइस एडमिरल हरि कुमार से मिलना हुआ और इसके फलस्वरूप नेवी में ऑफिशियली प्रोग्राम शुरू हुए SSW के, पहले कमांड लेवल पे, फिर यूनिट लेवल्स पे, और SSW की बहुत सी टीम्स ने इसमें पार्ट लिया। लास्ट ईयर कोविड की वजह से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को लेकर SSW ने ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया और इसमें पहल फिर से नेवी ने की। कई कमांड्स में कई यूनिट्स ने पार्ट लिया और ये प्रक्रिया कई महीनों से चल रही है। देखते देखते पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी और स्टेट पुलिस ने भी ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया। 27 मार्च को सब नेवल कमान के लिए एक बड़ा प्रोग्राम हुआ, जिसमें सिस्टर शिवानी ने सब नेवल कमांड के यूनिट्स को संबोधित किया। वाइस एडमिरल अनिल चावला, मिसेस सपना चावला, कई एडमिरल्स और सीनियर ऑफिसर्स के साथ करीब 5000 ऑफिसर्स, सेलर्स और फैमिली मेंबर्स ने इसमें पार्ट लिया। ज्यादातर लोग ऑडिटोरियम, वेलफेयर सेंटर्स, शेड्स वगैरह में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए जुड़े थे। ये 5000 व्यक्ति सदन नेवल कमांड के 35 यूनिट से थे, जो 7 राज्यों में फैले हुए हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि राजयोग मेडिटेशन एक बहुत ही पावरफुल टूल है मन की शांति और अंदरूनी शक्ति को जगाने के लिए। ये प्रैक्टिस किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। मेरा अपना अनुभव है कि इसकी प्रैक्टिस से जिंदगी में जो नॉर्मल चैलेंजेस और परिस्थितियां आती हैं, उनको निपटने में खुद को हम सक्षम पाते हैं। थैंक यू। जय हिंद।
मित्रों, घोषाल जी के सुंदर अनुभव से हम सबको निश्चित रूप से बहुत सुंदर प्रेरणा प्राप्त हुई है कि हम भी अपने जीवन में बहुत गहराई से अध्यात्म की ओर उतरकर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। और आज के पूरे सत्र में ही हमारे सभी स्पीकर्स ने अपने अनुभव युक्त बातों से हमें जो प्रेरणा दी है, उस पर भी हम जरूर विचार करें। क्योंकि घोषाल जी ने भी से हैं, शिप में रहे होंगे लंबे समय तक, तो शिप की एक बात मुझे याद आ गई कि एक शिप सागर पे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। उसमें बहुत सारे यात्री थे, एक छोटा बच्चा भी था। अचानक भयंकर तूफान आया, ऐसा लग रहा था कि अब शायद ये शिप नष्ट हो जाए। सभी के अंदर बहुत हलचल की स्थिति थी, लेकिन बच्चा बिल्कुल निश्चिंत था, हल्का था, खेल रहा था जैसे वो पहले खेल रहा था। सभी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये कैसे इतना निश्चिंत है, कैसे हल्का है। जब तूफान थम गया तब लोगों ने पूछा कि तुम कैसे बिल्कुल इतने हल्के फुल्के थे, निश्चिंत थे, सभी लोग तो डर रहे थे। तो उस बच्चे ने कहा कि इस जहाज के जो कैप्टन है वो मेरे पापा हैं, और मुझे पूरा विश्वास था कि पिताजी कैसे भी तूफान से हमारे शिप को बाहर ले जाएंगे, गंतव्य की ओर ले जाएंगे। आज जिस सुप्रीम सोर्स की बात हम सुन रहे थे, ये सुप्रीम सोर्स सचमुच हमें भी वही बल, वही विश्वास प्रदान करते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं। जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आ जाएं, लेकिन यदि मुझ पर विश्वास है, मुझ पर आस्था है, तुम मुझसे जुड़े हुए हो, तो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। सचमुच कितनी बड़ी उपलब्धि और कितनी बड़ी प्राप्ति है। तो क्यों ना मेडिटेशन के माध्यम से हम अपनी इस अनुभूति को सदा के लिए अपने जीवन का एक अंग बना लें। तो इस पर बहुत गहराई से विचार कीजिएगा। कल पुनः प्रातः 10 बजे आप सबके साथ एक नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।
अपनी जरूरतों को किनारे रख हमारी सुरक्षा जिनके जीवन का ध्येय है, जिनका व्यक्तित्व ओज, वीरता और जुनून के तेज से चमकता है, भारत के जांबाज शूरवीरों के लिए ब्रह्मा कुमारी सिक्योरिटी सर्विसेज विंग प्रस्तुत करता है 22 और 23 मई को 2 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस इन स्ट्रेंथ की टू ओवरकम चैलेंज। Awakening TV चैनल पर, टाटा स्काई 1084 पर या जियो TV 1060 पर। आप देख रहे हैं अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज़।